नमस्कार।
आज हम वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर चर्चा करने वाले हैं।
जी, ये 1984 की आश्विन नवरात्रि का है और इसका शीर्षक है भगवान भाव के भूखे होते हैं।
हाँ, बहुत सुंदर शीर्षक है और इसका मूल विचार यही है कि ईश्वर को बाहरी दिखावा नहीं बल्कि हमारे मन की सच्चाई, हमारी भावना ज्यादा प्रिय है।
बिल्कुल। वंदनीय माता जी शुरू में गायत्री मंत्र का पाठ कराती हैं और फिर सीधे मुद्दे पर आती हैं, पात्रता।
हाँ, ये पात्रता वाला बिंदु बहुत अहम है।
उन्होंने समझाया, जैसे बादल तो सब जगह बरसते हैं बिना किसी भेदभाव के, पर पानी टिकता वही है जहाँ गड्ढा हो, जहाँ पात्र हो, है ना?
बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही ईश्वरीय कृपा तो बरस रही है, पर उसे धारण करने के लिए हमारे अंदर योग्यता और शुद्धता होनी चाहिए।
ये पात्रता का विचार सच में सोचने लायक है।
हाँ, और माताजी इसे कितने सुंदर ढंग से प्रकृति के उदाहरणों से समझाती हैं, जैसे केले में कपूर या सीप में मोती।
हाँ, या सांप में मणि, बांस में वंशलोचन।
जी,
ये सब तभी संभव है जब सही परिस्थिति हो और ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो।
उन्होंने कहा भी कि अगर मुंह बंद हो तो बारिश की बूंद भी अंदर कैसे जाएगी।
मतलब ग्रहणशीलता, अंदर से खुलापन बहुत जरूरी है।
हाँ जी, आंतरिक शुद्धि और योग्यता विकसित करना पहली शर्त है।
और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो गुरुजी के दर्शनों से जुड़ी थी।
अच्छा, क्या कहा उन्होंने?
जब लोग कहते थे कि गुरुजी के स्थूल शरीर के दर्शन नहीं हो पाए तो माता जी का जवाब बड़ा सीधा होता था। वो पूछती थी, क्या हार्ड मास की आंखों से दर्शन करने आए थे?
अरे वाह,
मन की आंखें खोलो, गुरुजी तो साथ ही हैं। मतलब कितना गहरा कटाक्ष है ये।
बिल्कुल, सच्चा दर्शन तो उनके विचारों को, उनकी तपस्या को जीवन में उतारना है, न कि सिर्फ भौतिक शरीर को देखना।
वही तो। और ये बात आगे जुड़ती है कि भगवान चापलूसी से प्रसन्न नहीं होते।
सही कहा, ये नहीं कि अगरबत्ती जला दी, दो फूल चढ़ा दी और हो गया काम।
हाँ, अगर मन कहीं और भटक रहा है तो फिर उसका क्या फायदा?
वो तो भाव देखते हैं, सच्ची भावना। इसीलिए तो वाल्मीकि का उदाहरण कितना सटीक बैठता है।
हाँ, कि मरा मरा जैसा अशुद्ध उच्चारण भी उन्हें ऋषि बना गया। क्यों?
क्योंकि अंदर सच्ची भावना थी, पश्चाताप था।
और उन्होंने कुछ कहानियां भी सुनाई, वो भी बड़ी प्रेरणादायक हैं, जैसे वो कबूतर कबूतरी वाली।
हाँ हाँ, याद है, वो अपने अतिथि एक भूखे बहेलिए के लिए खुद आग में कूद गए।
सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, और उस निस्वार्थ भाव ने बहेलिए का हृदय ही बदल दिया।
यही तो है सच्ची मानवता और अतिथि सत्कार की शक्ति।
और वाल्मीकि वाली कहानी भी इसी दिशा में ले जाती है, आत्म परिष्कार।
जी,
जब उनके परिवार वालों ने कहा कि हम तुम्हारे पापों के भागीदार नहीं बनेंगे,
तब उनकी आंखें खुली, अज्ञानता दूर हुई
और फिर पश्चाताप करके वो ऋषि बने।
ये प्रेरणा भगवान ही देते हैं, केवल स्वर्ग का लालच नहीं।
फिर संत एकनाथ की कहानी, वो तो सच में दिल छू लेती है।
हाँ, वो गंगा जल वाली रामेश्वरम ले जा रहे थे और रास्ते में
प्यासा गधा मिला।
हाँ,
ही सारा जल उसे पिला दिया,
क्योंकि उन्हें उस गधे में ही रामेश्वरम दिख गए, भगवान दिख गए।
और फिर कहते हैं कि गधे ने कहा, मैं ही रामेश्वरम हूँ।
अद्भुत, ये दिखाता है कि सच्ची करुणा और सेवा में ही ईश्वर बसते हैं।
और शबरी का उदाहरण, वो भी तो यही सिखाता है।
बिल्कुल, समाज उन्हें अछूत मानता था, पर वो पूरे निष्ठा से बिना किसी स्वार्थ के राम के रास्ते के कांटे साफ करती रहीं।
और भगवान राम स्वयं चल के उनके पास आए।
और सिर्फ आए ही नहीं, उनके जूठे बेर खाए।
और लक्ष्मण ने टोका भी।
हाँ, पर राम ने क्या कहा, मैं बेर नहीं खा रहा, मैं तो भक्त की भावनाएं खा रहा हूँ।
क्या बात है, मतलब भगवान को भाव प्यारा है, जाति या भारी शुद्धता नहीं।
बिल्कुल, वो भक्ति और भावनाओं के भूखे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है आत्मा पर जो मैल चढ़ाया उसे हटाना।
हाँ, जैसे माताजी कहती हैं कि राख से ढका अंगारा
गर्मी नहीं दे सकता,
वैसे ही अशुद्धियों से ढका मन, मैला अंतःकरण ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। उन्होंने बुद्ध का उदाहरण भी दिया था, याद है?
हाँ, कि गंदे बर्तन में अच्छी चीज डालोगे तो
वो भी गंदी हो जाएगी, तो पहले बर्तन यानी मन, उसकी सफाई जरूरी है।
तो ये आत्म परिष्कार कैसे होगा?
माताजी कहती हैं, अपनी पिछली भूलों को स्वीकार करना होगा, और सिर्फ स्वीकार नहीं भविष्य में उन्हें न दोहराने का पक्का संकल्प लेना होगा।
जब अंतकरण की ये भूमि साफ होगी
तभी भक्ति का बीज उसमें अंकुरित हो पाएगा। जैसे कहते हैं ना, गायत्री माता निर्मल हंस पर विराजती हैं।
यानी शुद्ध अंतकरण में ही उनका वास संभव है।
जी,
और इस समर्पण का, इस आत्म परिष्कार का सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद गुरु जी स्वयं थे।
निसंदेह, माता जी बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी युवावस्था से लेकर मतलब 15 से 75 वर्ष की आयु तक अपना पूरा जीवन गायत्री साधना में गला दिया।
जैसे बीज गलकर पेड़ बनता है।
बिल्कुल, उसी अथक ताप और पूर्ण समर्पण से उन्हें माँ गायत्री की वो असीम कृपा मिली।
इसी से जुड़ा भक्ति का एक और पहलू है, श्रद्धा और निष्ठा।
हाँ, भक्ति के ये दो रूप बताए गए हैं, श्रद्धा का विकास और निष्ठा का विकास। एकलव्य का उदाहरण देखिए।
हाँ, गुरु द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया था सिखाने से,
पर उनकी मूर्ति बनाई, उसे ही गुरु माना और ऐसी श्रद्धा रखी कि महान धनुर्धर बन गया।
कहते हैं जब श्रद्धा इतनी पक्की हो, इतनी दीक्षित हो जाए,
तो भगवान स्वयं मदद करने आते हैं, मार्गदर्शन करते हैं।
और फिर कबीर, मीरा, रैदास जैसे भक्त।
जी, जो शायद औपचारिक रूप से पढ़े लिखे भी नहीं थे,
पर उनकी सच्ची भक्ति, उनका खरा भाव और गुरु पर अटूट निष्ठा,
उसी ने उन्हें महान बना दिया, अमर कर दिया। ये दिखाता है कि ईश्वर के यहाँ जाति, शिक्षा, बाहरी आडंबर, इन सब का कोई मोल नहीं।
मोल है तो बस आंतरिक निष्ठा का, सच्चे समर्पण का।
एकदम सही। तो वंदनीय माता जी के इस उद्बोधन का सार यही निकलता है कि ईश्वर को पाने का रास्ता बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा आंतरिक शुद्धि से होकर जाता है।
सच्ची भावना, जिसे वो भाव कहती हैं, निस्वार्थ सेवा और पूर्ण समर्पण।
हमें पहले अपने मन के बर्तन को मांजना होगा, साफ करना होगा, ताकि ईश्वरी कृपा उसमें ठहर सके, समा सके।
वाकई ये बहुत गहरी और सोचने वाली बातें हैं।
और अंत में एक सवाल जो माताजी के ही शब्दों से मन में उठता है और जो शायद हमें सोचना चाहिए।
क्या सवाल?
उन्होंने एक भक्त से पूछा था, अच्छा तुमने अपने समाज और विश्व के लिए क्या किया?
ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच्ची भक्ति और आत्मिक विकास का अर्थ केवल अपनी मुक्ति है, या इसमें अपने आसपास के संसार के प्रति करुणा और सेवा का भाव भी जुड़ा हुआ है।
शायद सच्ची पात्रता इसी विश्व कल्याण की भावना से, इसी संवेदना से विकसित होती है।
हो सकता है, ये विचार हमें अपने साथ ले जाना चाहिए।